તારીખ 5/3/1993 શ્રી નિયમસાર શાસ્ત્ર ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું સોનાગીરીમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 19. મૂળ કેસેટમાં અવાજ ધીમો છે તથા ડિસ્ટર્બન્સ છે.
आत्मा का शुद्ध स्वभाव, शुद्ध स्वभाव में शुद्ध स्वरूप अधिकार में आत्मस्वभाव का भावना भाते हुए आचार्य महाराज ने हिंद कार्य तत्वों का भी अच्छी तरह से प्रतिपादन किया है. निरंकार परमागम की दो विशेषताएं हैं. एक विशेषता तो यह है कि भगवान कुलकुल आचार्य ने ये ग्रंथ अपने आत्मभावना बढ़ाने के लिए, अपनी आत्मभावना वृद्धिगत करने के लिए ये ग्रंथ की रचना की है. आखिर की गाथा है तो स्वयं कहते हैं कि मेरी भावना के अर्थ मैंने इस आगम की रचना की है. मैं इस बात का ख्याल करना है कि भगवान कुंद कुंद जैसे समर्थ आचार्य जब अपने आत्मस्वरूप की भावना भाते होंगे तो किस प्रकार से भाते होंगे. 2000 साल पहले ये जंगलवासी संत अपने आत्मरमणता में रमते रमते जमते जमते आत्मभावना को किस तरह से, किस ढंग से, किस प्रकार से भाते होंगे. अगर ये शास्त्र नहीं रचा होता तो हमें इसका पता
इस शास्त्र से हमें पता लगता है
कि आचार्य भगवंत आत्मस्वरूप की भावना किस कैसे उत्कृष्ट भावना किस विधि से किस प्रकार से भाते थे. आत्मकल्याण के विषय में देखा जाए तो मोक्ष मार्ग के आद्यांत आदि और अंत प्रारंभ से लेकर आत्मभावना का बहुत बहुत महत्व है.
मुमुक्षु को भी सर्वप्रथम
आत्मकल्याण का मूल जो है वो आत्मभावना से ही शुरू होता है. स्वरूप प्राप्ति की भावना कहो, आत्मकल्याण की भावना कहो, ये मुमुक्षु जीव का प्रारंभ का विषय रहा और उसी के कारण वो मोक्ष मार्ग को प्राप्त भी करता है. और मोक्ष मार्ग में जो आगे बढ़े हुए हैं ऐसे जो महान आचार्य हैं वो भी आत्मभावना भाते हैं, ये बात हमें नियमसार शास्त्र से मिलती है. इसलिए सबसे कोई बड़ी बात है आत्मकल्याण के परिणामों में तो ये आत्मस्वरूप की भावना की है. भावना में बहुत ताकत है. भावना में बहुत ताकत है. कितनी ताकत है कि इसकी बराबर बराबरी में कोई ताकत ही नहीं उतनी ताकत. उसको दर्शाते हुए पूज्य बैंसवी ने अपने वचनामृत में एक बात लिखी है कि चैतन्य में से जो भावना उत्पन्न होती है राग द्वेष की पार्श्व भूमिका में से नहीं, लेकिन जिस भावना का मूल पार्श्व भूमि बैकग्राउंड आत्मकल्याण है, उसमें से जो आत्म भावना उठती है वो भावना सफल हुए बिना रहती नहीं, वो गारंटेड बात है। वो बात अपने अनुभव से लिखी हुई बात है। अगर आत्मभावना सही आत्मभावना निष्फल होवे तो 14 ब्रह्मांड को भी शून्य होना पड़े। कितनी ताकत है कि 14 ब्रह्मांड से भी अधिक, इसका मतलब यह हुआ कि 14 ब्रह्मांड से भी अधिक। बहुत जबरदस्त बात लिखी है। कभी कभी हमें तत्व चर्चा का मौका रहता था बहन जी से, तो हम उन्हीं के वचनों के विषय में पूछ लेते थे कि आपका ये बहुत सुंदर वचन है, इसके पीछे आपकी क्या धारणा है, किस चिंतन में से, किस गहन चिंतन में से ये बात बाहर आई है, थोड़ा हमें भी इस विषय में कुछ बता सके तो प्रमोद होगा। तो इस विषय में भी एक प्रश्न पूछा गया था कि ये बात आपने कैसे लिखी, आत्मभावना की ताकत 14 ब्रह्मांड से भी अधिक है, एक परमाणु को मिटा नहीं सकते, कोई पदार्थ का अभाव तो हो ही नहीं सकता, 14 ब्रह्मांड में तो अनंत अनंत परमाणु है, अनंत जीव है, क्षण द्रव्य है, सबों की ताकत से एक जीव की भावना की ताकत बड़ी है, ऐसा कहते हैं जो सही आत्म भावना में रही है। उन्होंने गणित की तरह से ये बात को समझाई, जैसे गणित का विषय समझ में आ जावे कि एक और एक दो होता है, एक उसमें एक मिलाने से दो होता है, वैसे वो बात समझाई कि विश्व में पुण्य का और पाप का फल मिलता है कि नहीं मिलता है। एक जीव को पुण्य के फल में असंख्य योजन स्वर्ग में जाना होता है, और एक जीव को पाप के फल में असंख्य योजन नरक में भी जाना होता है, और वहां जाने के लिए कोई साधन की आवश्यकता नहीं रहती। हमारे तो यहां से यहां जाना हो तो शरीर में ताकत चाहिए, या हमें कोई वाहन व्हीकल चाहिए, कुछ न कुछ चाहिए, लेकिन ये तो शरीर छोड़ के जा सकता है जी, शरीर इधर रह जाता है और असंख्य योजन वो चला जाता है। ये कुदरती परिस्थिति है, जो परिस्थिति कुदरत निर्माण करती है। और ये विकारी भावों के फल में, किस भाव के फल में, जो मलिन परिणाम है, अपवित्र परिणाम है, उसका फल भी कुदरत में अनिवार्य है। निद्यत निकाचित कहते हैं ना हम लोग, अनिवार्य है। तो जिसमें अनंत अनंत शक्तियां भरी है, ऐसा जो स्वभाव है, उस स्वभाव में लीन होने के लिए जो भावना है, वो भावना के साथ क्या कुदरत नहीं बंधी हुई है? जब मलिन परिणामों के साथ भी कुदरत की व्यवस्था है, ये वस्तु स्थिति है, उसमें कोई हेरफेर कर सकते हैं
नहीं।
कर्मों के फल जो बोलते ना, इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र, समूह के लिए कानून एक ही होता है बाकायदा, जो भी परिणाम होगा इसका फल होगा ही होगा, एक भी परिणाम निष्फल नहीं है। तो ये शुद्ध भाव है, और इसकी जो भावना है शुद्ध भावना है, क्या इसके साथ कुदरत बंधी हुई नहीं है क्या? ऐसा बताया। क्या बताया उन्होंने? कि जब विकारी परिणामों के साथ कुदरत बंधी हुई है, तो शुद्ध भावना के साथ कुदरत कैसे नहीं बंधी हुई है? इसलिए किसी भी जीव की शुद्ध अंतकरण से उत्पन्न हुई, शुद्ध चैतन्य में से उत्पन्न हुई शुद्ध आत्म भावना है, वो कभी निष्फल
नहीं जाती।
तो कहते थे मुमुक्षुओं को, कोई ऐसे भी मुमुक्षु आते थे, क्या करें हम तो सारा जीवन बीत चुका, करीब करीब बुढ़ापा हो गया, अभी तो आंख से अच्छी तरह देखा नहीं जाता, कान से अच्छी तरह सुना नहीं जाता, और स्मृति भी करीब करीब विस्मृति हो रही है, भूल जाते हैं, स्मरण भी जो कुछ पढ़ा है सीखा है समझा है वो विस्मृत हो रहा है। रोने लगते थे कोई, क्या करें? ये मनुष्य पर्याय जिसमें हम हमारे सिद्ध पद का सिद्धालय में रिजर्वेशन कर सकते हैं,
बराबर बराबर
कितना बड़ा काम कर सकते हैं, इधर आरक्षण, इधर से ही हमारा एडवांस बुकिंग
हो सकता है।
ऐसी ये मनुष्य पर्याय है, ये करीब करीब जब बीत चुकती है, जीवन के उत्तरार्ध में संध्या काल में पहुंचते हैं, और इंद्रियां शिथिल हो जाती है, शरीर शिथिल हो जाते हैं, क्षयोपशम भी कुछ कम हो जाता है, तो स्मृति भी कम हो जाती है, तो भावने भावना वाले कोई मुमुक्षु रोने लगते थे, तो ऐसे सांत्वन देते थे, आश्वासन देते थे, कोई बात नहीं, भले ही सुनाई नहीं देता हो, भले दिखाई नहीं देता हो, भले कोई शास्त्र की बात स्मृति में नहीं रहो, लेकिन आत्मा की भावना तो भा सकते हो। इसमें न कोई आंख की जरूरत है, नेत्र की जरूरत है, न कोई कान की भी जरूरत है, न कोई शास्त्र की जरूरत है, न कोई क्षयोपशम की भी जरूरत है, अपने स्वरूप की भावना में आओ, और अपने आत्मा से जो यह भावना निकलेगी तो किसी भी हालत में ये काम हो सकता है। तो उतने आश्वासन वो देते थे कि आप तो भावना वाले हैं, जब रोने लगते हैं तो कुछ भावना है, तो उनकी भावना को पकड़ के कहते थे आप तो भावना वाले हैं, कोई बात नहीं, भावना बढ़ाते जाओ, भावना को वृद्धिगत करते जाओ, बस यही करने लायक है। तो ये बात है भगवान कुंद कुंद आचार्य की आत्म भावना की, नियम सार मैंने कुंद कुंद स्वामी की आत्म भावना, ये परमागम की विशेषता है। दूसरी तो ये नामकरण जो किया है आचार्य महाराज ने, जिसका स्पष्टीकरण वो ग्रंथ के प्रारंभ में ही कर चुके हैं, कि नियम से जो करने योग्य हमारे जीवन में, नियम से मैंने किसी भी हालत में, कोई भी द्रव क्षेत्र काल भाव हो, अपने स्वरूप का श्रद्धान, अपने स्वरूप का अनुभव ज्ञान, और अपने स्वरूप में लीनता एकाग्रता, ये तीनों बात, तीनों प्रकार के परिणाम हमेशा साथ रहते हैं और ये तीनों अवश्य अवश्य करने योग्य है, ये सारभूत है। दूसरे सब परिणाम को परिणामों से हट करके ये स्वरूप के श्रद्धा ज्ञान चारित्र के परिणाम है, वही नियम से करने योग्य है, ऐसा कह करके इस शास्त्र का जो नाम है वो सार्थक किया है। तो सारे ग्रंथ में, हर गाथा में ये आचार्य महाराज का स्वरूप भावना का दृष्टिकोण रहा है।
मुमुक्षु के दिल में क्या भावना है, मुमुक्षु के दिल में क्या भावना है?
आत्मकल्याण का भावना होनी चाहिए। आत्मकल्याण की भावना बिना मुमुक्षु के ज्ञान में अपना स्वरूप का, स्वभाव का निश्चिंत होने का मौका नहीं आता, अवसर नहीं आता। संसारी जीव के परिणाम में जो मलिनता है
जी,
और जो ज्ञान है वो कषाय रस रंजित है, कषाय रस से रंजित जो ज्ञान की परिणति है, उसी कारण से उनको अपना निर्मल पवित्र शुद्ध स्वभाव है वो ज्ञान में आता नहीं। और जब तक अपना स्वरूप ज्ञान में नहीं आता तब तक अपना कर्तव्य के विषय में, अपना हित किस कर्तव्य में है, अपना अहित किस कर्तव्य में है, उसका विवेक जागृत नहीं होता। तो इसलिए हमारे परिणाम में मुमुक्षु की भूमिका के योग्य निर्मलता होने में कोई सबसे बड़ा साधन है तो ये स्वरूप प्राप्ति की भावना है। ऐसे तो समयसार आदि ग्रंथों में वेद ज्ञान की प्रधानता कही है, वेद विज्ञान तथा सिद्धा सिद्धा ये किल केचन, अगर सिद्ध पद तक पहुंचना है तो वेद विज्ञान ही मात्र साधन है। लेकिन वेद विज्ञान होता नहीं हुए तो क्या हो, क्या क्यों नहीं होता है? हमारे जो मुमुक्षु समझे समय सारा आदि पढ़ करके, उनकी एक समस्या भी खड़ी हुई कि वेद विज्ञान अवश्य कर्तव्य है लेकिन होता नहीं है, क्या करें? कभी वेद विज्ञान का विचार आता है पदम सिंह जी? लेकिन वेद विज्ञान सतत चलना चाहिए, हर उदय में, हर प्रसंग में, हर हालत में, ये होता नहीं है, इसका क्या कारण? किस बात की कमी है हमारे में जिसलिए भेद विज्ञान उदित नहीं होता है? अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो इसका प्रत्युत्तर ये है कि जिसको आत्मभावना होती है, आत्मकल्याण की जिसको तीव्र भावना होती है, उसी को ही भेद विज्ञान होता है। भेद विज्ञान करने की इच्छा मात्र से, राग मात्र से भेद ज्ञान नहीं होता है। इसका मूल कारण आत्मभावना है। लिया है 17-18 गाथा में समय सार के, मोक्षार्थी है वो भेद ज्ञान में प्रवीण होता है, प्रवीण मैंने कुशल, एक्सपर्ट, लेकिन कौन? कि मोक्षार्थी। आत्मकल्याण की भावना मैंने पूर्ण आत्मकल्याण, मोक्ष मैंने पूर्ण कल्याण, क्योंकि आदर्श कभी अधूरा नहीं होता, आदर्श पूर्ण शुद्ध हो ही होता है। इसलिए आत्मभावना के बिना भेद ज्ञान ही चालू नहीं होता है। तो फिर भेद ज्ञान का फल स्वरूप जो अनुभूति है वो तो होने का अवसर ही नहीं है।
बराबर,
आगे की स्टेज की बात है। इसलिए
अनुभव नहीं था।
भावना के शब्द के भिन्न भिन्न प्रकरण में भिन्न भिन्न अर्थ घटन है। मुमुक्षुओं को तो भावना है, ये कुछ उल्लासित वीर्य से आत्मकल्याण के परिणाम है, जिसमें मुख्यतया वीर्योल्लास है, वरना ये राग हो जाएगा या विकल्प हो जाएगा। सिर्फ इसलिए इसका जो लक्षण है वो उल्लासित वीर्य से जो भावना नहीं उठती है तो भेद ज्ञान चालू नहीं होता, क्योंकि भेद ज्ञान में पुरुषार्थ चाहिए। और भेद ज्ञान के लायक पुरुषार्थ कब होवे, कि जब उल्लासित वीर्य से भावना में रहे तब। और उसी भावना को मुनि दशा में स्वरूप चारित्र भी कहते हैं। अनुभूति क्या, अनुभूति भी कहते हैं और आत्मस्थिरता को भी आत्मभावना कही है, तो निश्चय भावना है। तो जहां जो प्रकरण चलता हो उसी के अनुसार भावना शब्द का अर्थ समझना चाहिए। अर्थ घटन के बारे में कभी किसी एक शब्द का एक ही अर्थ पकड़ के आग्रह में नहीं आना चाहिए, आग्रह में आ जाने से विवाद शुरू हो जाता है। क्योंकि शब्दों को तो पता ही नहीं है कि मेरा अर्थ क्या है। शब्द को पता है क्या?
नहीं।
शब्द को तो पता ही नहीं है कि मेरा अर्थ क्या है। अब शब्द का अर्थ जो है वो तो ज्ञान में पैदा होता है। शब्द तो वाचक है, वाचक रूपी साधन है, और साध्य अर्थ है जो ज्ञान से सदा जाता है। शब्द साधक है, अर्थ साध्य है, ये साध्य साधक की श्रृंखला है। और जब अर्थ साधक होता है तो ज्ञान रस साध्य होता है। क्या होता है? ज्ञान रस साध्य होता है। ये बात कही दीपचंद जी साहब ने अनुभव प्रकाश में। अनुभव प्रकाश को आपने पढ़ा होगा, स्वानुभूति का छोटा सा बहुत सुंदर ग्रंथ है। ग्रंथ की विशेषता यह है कि यह ग्रंथ प्रायोगिक पद्धति से लिखा गया है, प्रैक्टिकल साइड जिसको कहते हैं, प्रयोग पद्धति जिसको कहते हैं, उसी ढंग से वो लिखा गया ग्रंथ है। शब्द अर्थ और ज्ञान, ज्ञान रस उत्पन्न होना, इस शब्द से लेकर एक श्रृंखला है। और ज्ञानी जो है उनको शब्द के अर्थ रूप जो शब्द को विद्वान लोग बनाते हैं, पंडित लोग बनाते हैं, साक्षर लोग बनाते हैं, उसकी पाबंदी नहीं रहती। जय सार कलश टीका लिखी, बहुत अध्यात्मपूर्ण टीका लिखी, वो संस्कृत का एक एक खंड करके, शब्द के खंड करके अर्थ गठन कर रहे हैं, टीका लिख रहे हैं, तो शब्दकोश के अनुसार नहीं वो अर्थ करते। एक दफे शास्त्र सभा में कुछ गुरुदेव ने अपने एक संस्कृत के विद्वान पंडित को पूछा कि राजमल जी, इस शब्द का इधर ये अर्थ लिखा है, क्या ये शब्द का यही अर्थ होता है संस्कृत में? तो विद्वान ने बोला कि नहीं, ये शब्दकोश के अनुसार तो ये अर्थ नहीं होता है, लेकिन राजमल जी तो अपनी आत्मा की मस्ती में से अर्थ निकालते हैं, तो शब्दकोश में से अर्थ नहीं निकालते। तो ये बात नहीं शब्दों के अर्थों की। यहाँ पर प्रस्तुत गाथा में हमारे स्वरूप की भावना का ही विषय रहा है, जो ग्रंथ का प्रधान विषय रहा है। क्या कहते हैं कि हमारा जो मूल स्वरूप है वो तो सिद्ध समान है। हमारा मूल स्वरूप है वो सिद्ध समान है। हमारा मैंने सबों का अपना है, मैं भी सिद्ध और आप भी सिद्ध सिद्ध है। ज्ञान में इसी दृष्टिकोण को मुख्य लेकर के हमें हमारा स्वरूप की भावना में रहना है। यही अभिप्राय से ये गाथा भी लिखी गई है। जारी सिया सिद्धप्पा भव मल्लीय जीवा तारीसा होती जर मरण जम्म मुक्का अठ गुणालं किया थे। हे सीध जैसे जीव त्यों अन्वयार्थ, जैसे सिद्धात्मा है वैसे भवलीन संसारी जीव है।
बराबर।
तब
अभी
अभी सभी काल में और अभी ही जैसे सिद्धात्मा है सिद्धालय में विराजमान है, देह रहित विदेही परमात्मा जिसको कहते हैं
जी,
क्यों कि उनको सभी गुण शुद्ध रूप से प्रकट हो गए और एक भी अवगुण का अंश महा
नहीं है।
रहा भाव से द्रव्य से अवगुण के निमित्त से आने वाले या रहने वाले जो कर्म है नो कर्म है वो भी वहां नहीं है, सब खत्म, मुक्त आत्मा है। ऐसे जो सिद्ध परमात्मा है
जी,
वैसे ही हमारे आत्मा है जो अभी भव में है, भवलीन है, भव में तन्मय है। भव में तन्मय मैंने क्या कि अभी मनुष्य भव है। अभी कौन सा भव है हमारा? मनुष्य भव है। तो हमें बिना विचार करते हुए भी हम मनुष्य है वो परिणति चालू ही चालू रहती है। अगर कोई मनुष्य को कोई बोल देवे कि तुम तो गद्दे हो गद्दे या कुछ भी बोल देवे तो क्या वो बर्दाश्त करेगा? उसको विचार करने की जरूरत नहीं है कि वाकई में कोई गधा हो गया। सिद्ध रूप में देखने लगेगा क्या? जब सबों को सिद्ध रूप में देखने लगेगा तो तेरे सभी संसारी प्राणियों के प्रति का जो व्यवहार है वो तो सारा व्यवहार बदल जाएगा। श्रीमद्राज चंद्र जी ने इस विषय में एक बहुत सुंदर बात लिखी है। उन्होंने तो बात ली है मुमुक्षु की भूमिका की, पर उसमें भी एक खास प्रसंग लेकर के बात कही है कि जब किसी मुमुक्षु को आत्मज्ञानी पुरुष सत्पुरुष की पहचान होती है तो उस सत्पुरुष में रहा हुआ जो सिद्ध पद, इस सत्पुरुष के हृदय में विराजमान जो सिद्ध पद है, साथ साथ उस सिद्धपद का भी दर्शन होता है। क्या कैसे सिद्ध सत्पुरुष की पहचान होती है? क्योंकि इनकी परिणति तो साकार हो गई। सत्पुरुष वो है कि जिसको निष्दिन निरंतर आत्मस्वरूप की परिणति उत्पन्न हो, जो आत्मस्वरूप सिद्ध स्वरूप है, सिद्धपद स्वरूप है, तो उसकी परिणति के माध्यम से पहचान करने वाला जीव उसको परमात्मा के रूप में पहचानता है। किस रूप में पहचानता है?
परमात्मा के रूप में पहचानता है।
उसको परमात्म बुद्धि होती है, और सत्पुरुष में परमात्म बुद्धि यही मुमुक्षुं का परम धर्म है। वहां इतना लिखा है, सत्पुरुष में परमात्म बुद्धि यही मुमुक्षुं का परम धर्म मैंने पहला धर्म है। और यही होते हुए, ऐसा होते हुए उनको संसार के सभी प्राणियों के प्रति दासत्व उत्पन्न होता है। एक और बात लिख दी वहां कि उनकी 24 साल की उम्र में लिखी हुई बात है। किस साल में? 24 साल की उम्र थी जिस साल में उन्होंने आत्मानुभव किया। पत्रांक 256 है। कम बाद के मुमुक्षुओं को पत्र लिखा है, उसमें लिखा है कि मुमुक्षु की योग्यता काय से बढ़े, वृद्धिगत होवे, जो आगे बढ़कर के ये मुमुक्षुता आत्मानुभूति में परिणत हो जाए। तो उसमें बहुत से बातें लिखी हैं, उनमें से एक बात यह है कि उनको सत्पुरुष की पहचान करना चाहिए, क्योंकि दिया से दिया जलेगा, दिया से दिया जलता है, बिना दिया कोई दिया जलता नहीं। हम कागज पर दिया को चित्र बनावे तो एग्जैक्ट जैसा दिया है इससे भी बढ़िया बनाए चित्र, न इससे प्रकाश मिलने वाला, न इससे कोई दूसरा दिया जलने वाला भी। तो ये जो है सत्पुरुष की महत्ता दर्शाते हुए उन्होंने ये कहा कि इसकी पहचान है, ज्ञानी की पहचान करने वाले क्रमशः नियम से अवश्य रूप से ज्ञानी हो ही जाता है, ज्ञानी हुए बिना वो रहता नहीं। इसलिए इस बात का बहुत महत्व दिया उन्होंने, और साथ साथ उन्होंने एक उपलक्षण की जो बात कही वो बात बहुत बढ़िया की है कि सभी प्राणियों के, संसार के सभी प्राणियों के प्रति दासत्व होना है। जो भगवान कुंभकुंड आचार्य ने इस गाथा में उस बात का संकेत कर दिया, 47 गाथा में, ये अपना रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है चलते विषय के साथ। फिर कहीं अनुचित व्यवहार होगा ही नहीं, विनम्रता लानी नहीं पड़ेगी, वही जाइए। जब मैं आपको परमात्मा के रूप में देखता हूं तो मैं कैसे ऐसी नहीं करूंगा, मैं कैसे द्वेष करूंगा, मैं कैसे अयुक्त व्यवहार कैसे करूंगा, हो ही नहीं सकेगा। तो आचार्य महाराज यहां कहते हैं कि जैसे सिद्धात्मा है वैसे सभी संसारी जीव वैसे ही हैं मूल स्वरूप से, जिससे जिस कारण से जिससे मैंने जिस कारण से वे संसारी जीव सिद्धात्माओं की भांति जन्म जरा मरण से रहित है और अष्ट गुणों से अलंकृत है। क्या संसारी जीवों का जन्म मरण नहीं होता? कि वास्तव में तो नहीं होता, इनके स्वरूप में नहीं होता। क्या
जी
हम आपको प्रश्न पूछें या अपने आत्मा को हम प्रश्न पूछें कि क्या पूर्व भव में हम मर गए थे? अगर मरे होते तो अभी जिंदा कैसे होते? वास्तव में मरे होते तो अभी जिंदा कैसे होते? जैसे कोई स्वप्न में मर जाते हैं। क्या स्वप्न में अपनी मृत्यु को देखते हैं? कोई जागृत अवस्था में अपनी मृत्यु को देख सकता है क्या? नहीं देख सकता, लेकिन स्वप्न में तो देख सकता है। लेकिन जो स्वप्न पूरा हो जाता है तो उनको क्या अनुभव होता है? कि मृत्यु तुल्य एहसास हुआ जो हमारे स्वप्न में, तो जागृत अवस्था में पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। जागृत अवस्था में क्या अनुभव होता है? कि जो स्वप्न में हमने देखा या एहसास किया, देखा क्या एहसास किया, तो वो जागृत अवस्था में बिल्कुल ही स्वीकारने योग्य रहता नहीं कि ऐसा कुछ हुआ ही
नहीं।
हम तो मौजूद हैं। ऐसे हमारे सिद्ध पद की जागृति में हम अगर आते हैं अनुभूति से, तो हमारे जन्म मरण है वो स्वप्न तुल्य मालूम पड़ जाते हैं। ये सारा जीवन है एक सपना है। अब देखिए, जो भी जीवन के उत्तरार्ध में आए हुए हैं हम लोग, बाल भी सफेद होने लगे, कईयों के हो गए और कईयों के होने लगे, तो अपन थोड़ा एक विहंग अवलोकन कर ले, एक नजर लगा ले कि ये जिंदगी कितनी तेजी से चली गई। जो भी जितने साल चली गई, कितनी तेजी से चली गई। खाया पिया कुछ रहा क्या? जो भी बुढ़ापे में शरीर की अवस्था होने लायक है, कुछ भी खाएंगे? हीरे की भस्म खाए, मोती की भस्म खाए, सोने की भी खाए, तो भी जो भी वृद्धावस्था में तो शरीर होगा वही
होगा।
ये सब चला गया, स्वप्नवत चले जाता है काल। ऐसा एक सारा जीवन है, उसमें कोई बड़ा स्वप्न है और इसमें जो जो प्रसंग है वो छोटे छोटे स्वप्न है। क्या ये सब छोटे छोटे स्वप्न है और कुछ है नहीं? हमारे सोगानी जी साहब आए थे सुंदर, तो पिछले 5 साल वो हर साल आए, 18 साल में आए, वो करीब 7-8 बार से ज्यादा आने सके। लेकिन पिछले आखिर के साल में जो आए तो वो 17 दिन ठहरे थे। 17 दिन ठहरने के बाद जो हमको छोड़ने के लिए स्टेशन पर पहुंचे सोनगढ़ के, तो वो उतने बोले। क्या बोले
जी?
पदम जी सुनने लायक बात है। 17 दिन का एक स्वप्न पूरा हुआ। क्या बोले? सोनगढ़ का भी निकलने से पहले तो बहुत भाव विभोर हो गए, आंखों से पानी गिरने लगे। बोले कि सिद्धपुरी से जाना पड़ता है। क्या सोनगढ़ से नहीं बोले? सिद्धपुर से जाना पड़ता है। जाने का दिल नहीं है लेकिन जाना पड़ता है।
स्टेशन पहुंचे तो मुझे के 17 दिन का एक सपना पूरा हो गया। मैंने हमारे ध्रुव आत्मा में ये जन्म जरा मरण है वो कुछ है ही नहीं, लागू पड़ते नहीं, उस बाहर ही बाहर के प्रसंग हैं। उदय के उदय का अस्त होता है, सूर्य का अव्यय अस्त नहीं होता, नजर का अव्यय अस्त होता है। नजर में आता है तो उदय हुआ बोलते हैं, नजर के ओझल हो जाते हैं तो अस्त हुआ बोलता है।
वस्तु का उदय अस्त नहीं है,
सूर्य का उदय अस्त
वस्तु में नहीं है,
नहीं है वस्तु में नहीं है। सम्यक ज्ञान दीपिका में लेते हैं धर्मदास जी क्षुल्लक, तो ऐसे यहाँ भगवान कुंद स्वामी कहते हैं कि जन्म जरा मरण से रहित तो हमारा मूल स्वरूप है, और अष्टगुण जो है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य और अगुरु लघुत्व सूक्ष्मत्व अभियाबाधत्व आदि जो 8 गुण हैं उससे भरा हुआ है, अलंकृत है, मैंने शोभायमान है। अलंकारों से जैसे देह की शोभा होती है वैसे ही ऐसे अनंत गुणों में ये 8 गुण प्रधान हैं, और अनंत गुणों से हमारी सिद्ध समान शुद्ध आत्मा है वो शोभित है, बहुत सुंदर है, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर है वो सुंदर कितना होगा। हमारे एक भजन गाया एक आदमी ने कि जिसकी चर्चा उतनी सुंदर है वो सुंदर कितना होगा, कि उतना सुंदर है कि बस उसमें लीन रहे, उसी की भावना से उसमें लीन रहे, और बाहर आने के लिए हमें कोई परिणाम ही हमारा नहीं हुए, ऐसी भावना में हम रह जाएं। क्या टाइम हुआ है समझ आगे लेंगे समाज।